ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 13। ये भी गद्य है, सिर्फ इसका मैं फिर से शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जो है वो पढ़ रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा समय मिल जाएगा थोड़ा व्याख्या करने का। इत्थम बोलिए, इस प्रकार धृत भगवत व्रतः भगवान की सेवा का व्रत स्वीकार करके एणे अजिन वाससः मृगचर्म वस्त्र धारण किए अनुसवन प्रतिदिन 3 बार अभिषेक स्नान द्वारा अर्द्र गीला कपिश भूरा कुटिल जटा घुंघराले केशों की जटा कलापेन समूह से च तथा विरोचमानः अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई गई सूर्य अर्चा, सूर्य में स्थित भगवान नारायण के अंश विस्तार की वैदिक ऋचाओं द्वारा पूजा, भगवंतम भगवान को हिरण्यमयम स्वर्ण कांति वाले भगवान, पुरुषम भगवान उज्जिहाने उदय होते हुए सूर्यमंडले सूर्यमंडल में अभ्युपतिष्ठन पूजा करते हुए एतत् यह उह निश्चय ही उवाच कहा। इसका अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शीश पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली थी। वे मृगचर्म धारण करते और स्वर्णिम तेजोमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। तात्पर्य, सूर्य में प्रमुख देवता हिरण्यमय यानी भगवान नारायण हैं। उनकी आराधना गायत्री मंत्र से की जाती है जो इस प्रकार है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उनकी अर्चना ऋग्वेद में दी गई अन्य ऋचाओं से भी की जाती है, यथा ध्येयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सूर्य के भीतर भगवान नारायण का वास है और उनका रंग सुनहरा है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री उत्पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आज प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का ये पंचम स्कंद का सातवां अध्याय और अध्याय की समाप्ति है। इसके बाद एक श्लोक और है सिर्फ। आज मैं सुबह थोड़ा सा विचार कर रहा था इस बात पर कि कलयुग के प्रारंभ में इस कलयुग की विकटता को देखते हुए ऋषियों ने हजार वर्ष के यज्ञ की का संकल्प लेकर वो बैठे कि किसी प्रकार से यज्ञ में बैठकर हम अपने आप को संलग्न रख करके इस कलयुग के प्रकोप से बच पाएंगे। परंतु फिर विचार मन में ये आया कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने यज्ञ स्थापित किया है इस भागवत कथा के माध्यम से, कथाएं तो हम रोज सुनते रहते हैं, कहीं सप्ताह यज्ञ हो रहा है, कहीं मासिक यज्ञ हो रहा है, कहीं और द्विमासिक यज्ञ हो रहा है, वो होके समाप्त हो जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने ऐसा यज्ञ चालू किया है, ये कम से कम 10,000 से पहले तो कम नहीं होने वाला, ये बंद नहीं होगा बिल्कुल भी। और इतना सुअवसर हमारे लिए रोज बैठकर श्रीमद् भागवती संहिता परमहंस्यायाम संहिताम इसका श्रवण करना बहुत अतिशय सौभाग्य की बात है हमारे लिए। कभी बैकुंठ में ऐसा वर्णन है पुराणांतर के अंदर कि कभी जब भगवान विष्णु श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ बोलते हैं और लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं तो उनको कम से कम एक वर्ष लग जाता है उनको पूरा भागवत समाप्त करने में। इतना व्याख्या करते हैं, इतनी रसिक व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम की कि उनको एक वर्ष लग जाता है पूरा इस श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण करने में, वो भी जबकि ये तो सिर्फ 18,000 श्लोक हैं और आदि लोकों में तो और भी ज्यादा संख्या है श्लोकों की। तो भगवान विष्णु जब प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम पे बोलने का तो एक वर्ष में किसी तरीके से श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण कर पाते हैं। दूसरी तरफ अब श्रोता भगवान विष्णु बनते हैं और वक्ता लक्ष्मी जी बनती हैं। तो लक्ष्मी जी जब वैकुंठ में श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन करती हैं और भगवान विष्णु जब सुनते हैं तो उसी भागवत को पूरा करने में लक्ष्मी जी को 2 वर्ष लग जाते हैं। इतना विचित्र वर्णन देखिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भक्ता भी हैं एक रूप में, हाँ उनकी अर्धांगिनी हैं, तो भगवान के रूप लावण्य का जो रस जो है उसका आस्वादन उनको भगवान से ज्यादा होता है। उस लीला माधुरी का आस्वादन भक्त को भगवान से ज्यादा होता है, इसी कारण से नाना प्रकार के जो उनके हृदय में भाव उत्पत्ति होती है, जब रस की उत्पत्ति होती है उस रस को वर्णन करने में लक्ष्मी जी को ज्यादा समय लगता है, इसलिए 2 वर्ष। ऐसे ही कैलाश में जब भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं वहां पर भगवान शिव जब भागवत के ऊपर प्रवचन करते हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, तो भगवान शिव जब प्रवचन कर रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है पुराणांतर के अंदर उनको 1 महीना लगता है इस श्रीमद् भागवतम को समाप्त करने में, पूरा पारायण करने में, और जब पार्वती जी प्रवचन करती हैं तो इसी भागवत को समाप्त करने में उनको 2 महीने लग जाते हैं। तो देखिए शक्ति तत्व में ज्यादा रस जो है उसका आस्वादन करने की क्षमता है। भगवान बहुत रसिक हैं, रसिक शेखर रस राज हैं,
रस की जो व्याख्या की गई है शास्त्र के अंदर, बहुत सुंदर व्याख्या है रस की। बोले रस वो सुख है वास्तविकता में जो साधक के बाहर और भीतर के सारे कार्यों को रोक दे, रोक कर और जिस साधन में वो लगा हुआ है उस साधन के साथ मिलकर जब नित्य प्रति चमत्कारिता उत्पन्न होती है उसको रस कहते हैं। जब साधन कर रहा है व्यक्ति, नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, विग्रह दर्शन कर रहा है और विभिन्न भावों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, संचारी भावों के द्वारा जब उस व्यक्ति के अंदर चमत्कारिता उत्पन्न होती है ना कि देखते ही श्री कृष्ण को रोमांचकम पशुतरंग भाजो, ये सब हो जाए, इस चमत्कारिता को वास्तविकता में रस कहते हैं। और उस रस से भक्त के हृदय की पूर्ति होती है और वो हमेशा आनंद मज्जित रहता है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम कोई कहानी नहीं है, कोई मनोहर कहानियों का संकलन नहीं है, ये ऐसे चरित्र हैं जो कि जिनमें औपासनिक जो मूल्य हैं, सीक्रेट आइडिया, सेंट्रल आइडिया साधना के, उनको सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन चरित्रों के माध्यम से साधक जो है ना वो अपने मतलब की चीज निकाल के उसको साधन में लगाकर अपना जो जीवन है वो सफल कर सकता है। श्रीमद् भागवतम इतना परफेक्ट ग्रंथ है, पारमहंस्याम संहितायाम और ऊपर से बोला गया है भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम। जो ब्रह्मसूत्र है ना रसो वही सह, इन सब के ऊपर भी भाष्य व्यासदेव ने लिखा है। इतना गहन, इतना सूक्ष्म है श्रीमद् भागवतम। और इसका प्रयोजन क्या है देखिए, श्रीमद् भागवतम में क्या क्या स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह स्थापित करने का प्रयास किया गया श्रीमद् भागवतम में कि श्री कृष्ण ही परम साधन रूप है, परम उपास्य रूप है और परम प्रयोजन रूप है। तीनों का स्थापन श्रीमद् भागवतम करती है। कैसे करती है? परम साधन के रूप में। सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? सर्वोत्तम साधन अपनी सारी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण में लगा देना, इसको सर्वोत्तम साधन कहते हैं। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने जीवन में करके दिखाया, सारी इंद्रियों को अपने जीवन में उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को लगाया कृष्ण के चरणों में। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, श्री कृष्ण के मधुराति मधुर चरित्रों का वर्णन करने में अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी को लगा दिया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। अपने हाथों को उन्होंने लगाया श्री भगवान की सेवा करने में, और इस वाणी को लगाया भगवान के चरित्रों का गान करने में। तो ऐसे करके सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो सर्वोत्तम साधन के रूप में श्रीमद् भागवतम इसी को स्थापित करती है कि सारी इंद्रियों को जब आप कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो समझ लीजिए कि वो साधन सबसे सर्वोत्तम है। इसका निरूपण हो गया। अब इसके बाद सर्वोत्तम उपास्य तत्व, प्रयोजन तत्व कौन है? सर्वोत्तम प्रयोजन तत्व के रूप में भी श्रीमद् भागवतम कृष्ण को ही स्थापित करती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के लक्षणों का वर्णन किया गया है, अतः सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उतय मनवंते मनवंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। इस लक्षणों के वर्णन में जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बात कहते हैं। बोले देखिए आश्रय तत्व जो बताया गया है वो 12वें स्कंद को बताया गया है, और निरोध तत्व बताया गया है 10वें स्कंद को। परंतु जीव गोस्वामी पाद विचार करके बोलते हैं कि अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए ना तो आश्रय तत्व तो प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक सभी स्कंदों में मौजूद है। क्यों? क्योंकि आश्रय तत्व वास्तविकता में कौन है? श्री कृष्ण है। जीव गोस्वामी पाद का मत है कि आश्रय तत्व पहले स्कंद से लेकर बारहवें स्कंद तक पूरे स्कंदों में श्री कृष्ण ही विद्यमान है, क्योंकि इनका ही लीला चरित्र किसी ना किसी तरीके से गायन किया जा रहा है, ये परम उपासक के रूप में। और तीसरी बात, प्रयोजन तत्व के रूप में, प्रयोजन भी सर्वोत्तम जो है वो श्री कृष्ण को ही बताया जा रहा है। क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ यह है कि युगल श्री राधे श्याम की सेवा में लगना, पूरी तरीके से प्रेम सेवा जो करना है, उसी को ही प्रयोजन तत्व बताया गया। अब इसके लिए, प्रयोजन तत्व को संपन्न करने के लिए साधक को साधन की आवश्यकता होती है, और साधन के द्वारा ही व्यक्ति के हृदय में लोभ जागृत होता है। एक बात बहुत समझने वाली है, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब हम बहुत सिद्धांत समझते हैं ना, सिद्धांत जब पढ़ते हैं, सिद्धांत का कार्य है बुद्धि के अंदर निष्ठा पैदा करना। आपके अंदर ये निष्ठा आ जाए कि हाँ, कृष्ण परतत्व है, मुझे इनकी सेवा करनी है, ये निष्ठा पैदा करना सिद्धांत का कार्य है। परंतु सिद्धांत जो है वो लोभ पैदा नहीं कर सकता। सिद्धांत कभी लोभ पैदा नहीं करेगा। लोभ कौन पैदा करेगा जानते हैं? लोभ पैदा करेगी भगवान का लीला गायन, भगवान का चरित्र गायन जो है वो लोभ की उत्पत्ति करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रतिपादन इस बात का करती है, पूरे भागवत के अंदर, गीता के अंदर तो पूरा उपदेश है, पूरा सिद्धांत है, सिद्धांत इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु ज्यादातर जो है वो लीला गायन है, भक्तों के चरित्र के माध्यम से और श्री भगवान के चरित्र के माध्यम से। तो लीला का आश्रय लेकर जब व्यक्ति साधन में लगता है, तब उसको वास्तविकता में रस की प्राप्ति होती है। और सब रसिक बनना चाहते हैं कि नहीं, बताइए, कौन कौन बनना चाहता है रसिक? हाँ, ये वृंदावन जिसमें आप बैठे हैं, ये रस की भूमि है। अरे, यहां तो रसिक पैदा होते हैं, यहां पर पैदा होते हैं यहां पर। और जब आनंद लेते हैं भगवान के विरह में, जब उत्कंठित हृदय से जब गाते हैं ना, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान मिलवे को हीरा तपे जिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ये वृंदावन की भूमि है एक्चुअली, यहां पर ये रसिकों की वाणी जो है वो बाहर निकलती है। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री दास गोस्वामी पाद, इन्होंने यहां रहकर ये चीज सामने निकाली है हमारे, जिसको हम ग्रहण करके फिर रस में पूरी तरीके से निमज्जित हो सकते हैं। इतनी विस्तृत चर्चा है इस श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो ये जो चरित्र जो चल रहा है ना श्रीमद् भागवतम भारत महाराज का, साधक के लिए बहुत ही उपयुक्त चरित्र है। इस चरित्र के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना है कि भरत महाराज, देखिए कितना, कैसा साम्राज्य उनके पास था, और कितने समय तक उन्होंने राज्य किया, और एकदम से नहीं छोड़ दिया। जब छोड़ा, जब उनके पिताजी ऋषभ महाराज वापस आए उनके राज्य में और सोचे कि इनको कुछ उपदेश दे दिया जाए, वहां तक ही राज्य किए बस। और जब उपदेश मिल गया तो इनके हृदय पे इतना भारी प्रभाव पड़ा कि इन्होंने राज्य छोड़ दिया, त्याग कर दिया बिल्कुल। और त्याग करना वास्तविकता में बहुत आसान बात नहीं है, त्याग बहुत कठिन वस्तु है, हर कोई त्याग नहीं कर सकता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल जानते हैं किसे कहते हैं? गरल कहते हैं विष को। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने सर्प, जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन हो, विष रहित विनीत सरल हो। जो दंतहीन है आप उसको गले में लिपटा लो, चाहे अपने साथ सुला लो, वो काटेगा ही नहीं आपको, तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्षमा उसी को ही शोभती है। एक साधु बता रहे थे, बोले एक व्यक्ति, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, हाँ, वो सबके सामने यही कहता फिरता है हमने रबड़ी त्याग दी, हाँ। अरे भाई तेरे पास रबड़ी है ही नहीं खाने के लिए, तुझे 2 जून की रोटी तो मिल नहीं रही खाने के लिए, तू बोले रबड़ी त्याग दी। जब वस्तु सामने उपस्थित हो और आपका उससे वैराग्य हो जाए उसको त्याग कहते हैं। एक राजा थे, उनके राज्य में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पास एक बिल्ली पाल रखी थी, और जब भी अपने मंत्रियों को और सलाहकारों को कभी भी कुछ खरी खोटी सुनानी होती थी, कुछ डांटना होता था, तो अपनी बिल्ली को बुला लेते थे, बोले बिल्ली को बुला ले आओ, और बिल्ली को अपने सामने रखकर उसके मस्तक के ऊपर एक दिया रख देते थे जलता हुआ, हाँ, और उससे यही कहते थे कि ऐसे ही बैठी रहना, हिलना नहीं बिल्कुल भी। वो बिल्ली चुपचाप ऐसे बैठी रहती है। तो राजा बोलते, देखा है कितनी आज्ञाकारी है, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। अब जितने भी सलाहकार थे, मंत्री थे, वो बड़े चिढ़ गए इस बात से कि बोले जब भी हमारी कुछ, हमें कुछ खरी खोटी सुनानी होती, बिल्ली को बुला लेता है, इसके सर पे दिया रख देता है, और हर बार यही बोलता है कि ऐसी बैठी रहना चुपचाप, कुछ करना नहीं, और ये भी चुपचाप बैठी रहती है। तो बहुत समय हो गया, ऐसे चढ़ गए सारे के सारे। तो उनमें एक है ना वृद्ध मंत्री था, वो बोला महाराज आपकी बिल्ली कितनी आज्ञाकारी है हम आपको कल बताएंगे। बोले अच्छा ठीक है बता देना कोई बात नहीं। तो अगले दिन क्या, वो एक थैला लेकर आया और थैला में 4-5 चूहे ले आए, और चूहे, अब क्या हुआ, अगले दिन भी कुछ सुनाना था उसने, तो बिल्ली को बुला के लेकर आओ। बिल्ली को बुलाया, उसके सिर पे दीपक रख दिया, ऐसी बैठी रहना चुपचाप, कुछ करना नहीं, वो फिर ऐसी बैठी रही। अब की बार क्या हुआ, वो वृद्ध मंत्री जो था उसने थैला खोल दिया, और चूहे जैसे ही बाहर निकले ना, बिल्ली तो दिया विया फेंक के भागी। बोले महाराज आपकी बिल्ली आपका आज्ञा का पालन तभी तक करती है जब तक इसके सामने चूहे नहीं आते। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने आप को त्यागी, महात्मा, संयमी तभी तक समझता है जब तक उसके सामने विषय उपस्थित नहीं होते। जब विषय उपस्थित हो और तब आपके हृदय में वैराग्य हो, तब समझिएगा कि आपके हृदय में पूर्ण वैराग्य आ गया, त्याग आ गया, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। बुढ़ापे में तो वैश्या भी अपने आप को सन्यासी नहीं कहना शुरू कर देती है, क्यों, क्योंकि अब शरीर में ऐसा कोई बल नहीं है। तो जिसके पास सामर्थ्य है वो अगर विषयों को आने पर भी उनका वैराग्य उनको छोड़ दे, परे कर दे, तब समझे कि उसके अंदर त्याग आ गया है। तो ऐसे भरत महाराज त्याग तो किए, त्याग किए अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर एकदम से पुल्हा आश्रम आ गए, परंतु अभी भी उनके हृदय के अंदर पूर्ण रूपेण वैराग्य नहीं है। बहुत ही साधक के लिए तो इतना सुपर क्लास चरित्र है ना ये, कि कैसे मन को पकड़ के रखना चाहिए, ये भरत महाराज के चरित्र से सीखना चाहिए। वैराग्य की कमी है, अभी वैराग्य की कमी है भरत महाराज के हृदय के अंदर। क्यों, क्योंकि जब आए हैं पुल्हा आश्रम में तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं प्रजा पालन का संस्कार अभी विद्यमान है कि मैं प्रजापालक हूं, मैं राजा हूं, और इस प्रजापालक के संस्कार होने के नाते ही जब उन्होंने देखा, आगे के श्लोकों में आएगा कि हरिणी का बच्चा जो है वो नदी में बह रहा है, तो वो संस्कार जागृत हो गया हृदय के अंदर कि मैं प्रजापालक हूं और ये मेरे सामने एक मेरी प्रजा के रूप में ये हरिण का बच्चा जो है ये मर रहा है, मुझे इसका पालन करना चाहिए। बस इतना सा ही प्रलोभन भगवान की माया का, इतना त्याग करने वाली व्यक्ति को सोचिए, जो अपनी पत्नी को छोड़ाया, अपने 5 बच्चों को छोड़ाया, इतना बड़ा राज्य छोड़ाया, और यहां पर एक हरिणी के बच्चे में आसक्त हो गया, ये क्या है, ये मणिराम का खेल है। ऐसा फंसा देता है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। जब पुलहा आश्रम में आए गंडकी नदी के किनारे, तो ऐसा बताया जाता है इनके बारे में, स्थिति इनकी बहुत अच्छी पहुंच गई थी, भाव के स्तर तक की स्थिति पहुंच गई थी इनकी, और भाव के स्तर में इतने निमग्न रहते थे भगवान की सेवा में कि कभी कभार तो यही भूल जाते थे कि मैंने भगवान को स्नान कराया है या नहीं कराया है। इतना रूप माधुरी में शालिग्राम शिला, आप जानते हैं चतुर संप्रदाय जो है उनके इष्ट भगवान कौन है? चतुर संप्रदाय है ना चारों, ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय है, इनके इष्ट भगवान कौन है? शालिग्राम शिला। क्योंकि गौड़ियों में भी शालिग्राम की पूजा होती है, निम्बार्की में भी होती है, विष्णु स्वामी संप्रदाय में भी होती है, निम्बार्की सब में होती है, तो इनके इष्ट सबके इष्ट जो है वो शालिग्राम है। और जब पुलहा आश्रम में आए गंडकी के किनारे, गंडकी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऋषि की पुत्री थी, इन्होंने तप किया और भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान प्रकट हुए सामने, और जब प्रकट हुए तो बोले देवी वर मांगो। तो वर मांगने के लिए जब वो उद्धृत हुई तो बोले भगवान मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी गोद में सतत खेला कीजिए। तो भगवान बोले कि देवी ये कलयुग है, और कलयुग में मैं एक जगह पर सतत नहीं रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य अगर एक ही जगह पर रहेगा तो दिन रात नहीं होगा, रात के आने की भी आवश्यकता है, इसी प्रकार से हर कलयुग की, हर युगों की मर्यादा है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ऐसे इनकी मर्यादा है, अगर मैं यहां पर रहूंगा तो कलयुग नहीं आ पाएगा। तो जब ये समस्या सामने आई तो जो ये नदी जो है गंडकी, जो ऋषि की पुत्री है, इन्होंने कहा कि भगवान जो आपके प्रति हमने जो अपनी मांग प्रस्तुत की है ये क्या पूरी नहीं होगी? बोले होगी, अवश्य होगी, लेकिन इसके लिए आपको रूपांतरित होना होगा, आप नदी के रूप में बहिए और मैं भी अपने आप को रूपांतरित करके शालिग्राम के रूप में प्रकट होता हूं, तब जाके आपकी गोद में मैं सतत खोलता रहूंगा। ऐसा पुराणांतर में वर्णन है ऐसा कि ऋषि की पुत्री है, किसी को अगर किसी प्रकार से पता लगे तो कल्प भेद समझ लेना चाहिए। वर्णन बताया इसका, क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन यत सर्वम समाधेन तत् मुनिषिभिः। अगर विरोध कहीं प्रकट हो रहा है कि किसी ने कैसी कथा सुनी है, किसी ने कैसी, तो समझ लीजिए कि ये कल्प भेद का जो है प्रसंग है। तो तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके इन्होंने अपने आप को नदी के रूप में स्वरूपित किया और भगवान श्री कृष्ण जो है वो शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। तो इतनी विभोर हो जाते थे ये भगवान की सेवा करने में, कभी कभार तो ऐसा होता था कि श्री भगवान के मस्तक पर जल डाल रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, उनका स्नान कर रहे हैं, तो ये नहीं देखते थे कि मैं किसी पत्थरी शिला जो है उसको स्नान करा रहा हूं, वो ये देखते थे कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सामने उपस्थित है और मैं इनके सिर के ऊपर, इनके मस्तक पर जल डाल रहा हूं, और वो जल जो है इनकी अलकावलियों में से, घुंघराली अलकावलियों में से गिर के इनके शरीर पर पड़ रहा है पीताम्बर के ऊपर, और पीला पीला पीताम्बर और उसके अंदर नीला नीला श्याम रंग, और जब नीला और पीला मिलता था तो वो जो हरितिमा पैदा होती थी उसको देखकर ये पूरी तरीके से विभोर हो जाते थे, इतना इनका आवेश हो जाता था सेवा में। कभी कभार तो इतना आवेश हो जाता था कि ये सोचते थे कि अरे अभी तो सेवा की ही नहीं मैंने, फिर दोबारा सेवा करने लग जाते थे। कभी चंदन तुलसी घिसके रखते थे अपने पास और बैठे बैठे ध्यान में लग गया तो ध्यान में ही श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, जब ध्यान खुला तो ऐसा सोचते थे कि ये चंदन और तुलसी प्रसादी हो गया, चंदन माथे पे लगा लेते थे और माला गले में पहन लेते थे, इतना आवेश। व्यक्ति की स्थिति देखिए कहां तक पहुंची हुई है, हा? इतना आवेश हो गया था भगवान की सेवा के अंदर। तो इस स्थिति तक पहुंचने में उन्होंने साधन तो बहुत अच्छा किया, बहुत सुपर क्लास साधन, लेकिन कहां पर गलती हुई है जानते हैं? गलती हुई है ऐसा आचार्यगण वर्णन करते हैं। पहला तो रीजन मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं संस्कार हैं किसके, प्रजा पालन के। और दूसरा जो कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ये है कि इन्होंने ऋषभदेव से श्रवण तो किया उपदेश का, शिक्षाओं का। तो श्रवण के बाद, श्रवण के साथ साथ एक चीज और आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं साधु संघ। अगर आप श्रवण करने के बाद साधु संघ नहीं करेंगे ना, तो वो श्रवण जो है वो फिर दोबारा से कम हो जाएगा, जो आपने सुना है वह सब समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने श्रवण तो किया परंतु किसी साधु का संग नहीं किया, और सीधे ही कीर्तन में लगे जाकर, उस कारण से भी इनके सामने ये समस्या आई है। तो इतनी जब विभोरता में रहते भगवान के माधुर्य के अंदर कि श्री कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है। देखिए जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है तो श्री कृष्ण जो है व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर अपनी वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, इन चारों का प्रकाश कर देते हैं। और जब व्यक्ति इनमें इनको देखता है, इनका ध्यान करता है, तो पूरी तरीके से आनंद मज्जित हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे अद्वैत मत के प्रकांड पंडित, आपने अगर नाम सुना हो तो, मधुसूदन पाद सरस्वती, काशी में रहते थे। और इतने बड़े प्रकांड पंडित थे कि उस समय भारतवर्ष के अंदर उस जैसा कोई विद्वान नहीं था अद्वैत मत का। और शास्त्र अध्ययन बहुत करते थे, वेदाध्ययन बहुत करते थे। तो वेदाध्ययन करने से जो फल होता है वो ये है कि चित्त की शुद्धि होती है धीरे धीरे। तो ऐसा वर्णन है कि सन्यासी जो है वो चातुर्मास जो आता है उसमें वेदों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। तो एक वैष्णव उनके पास आए और उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। बोले भगवान ये चातुर्मास का समय है, आप इस समय वेद तो अध्ययन करोगे नहीं, तो आप श्रीमद् भागवतम ये जो है इसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। तो पहले उन्होंने थोड़ा सोचा कि ये मेरे कार्य की तो चीज़ है नहीं, परंतु फिर बोले कि ठीक है, वैष्णव किसी ने कहा है तो मैं प्रयास करता हूं। तो इन्होंने आद्योपांत प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक पूरा जो है श्रीमद् भागवतम पढ़ा। और जब दशम स्कंद पे पहुंचे और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बाल लीला है चाहे पौगंड लीला है, किशोरावस्था की लीलाएं हैं, ये जब इन्होंने सुनी, इन्होंने सब पढ़ी, तो इनका चित्त जो है वो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ। इन्होंने सोचा कि ये श्री कृष्ण कहाँ, तो वर्णन आया वृंदावन में रहते हैं। तो काशी से वृंदावन 2 महीना पैदल चल के आए यहां पर और यहीं वंशीवट पे बैठे आकर। और वंशीवट पे बैठे तो सन्यासी हैं, प्रणव का जप कर रहे हैं, ओम ओम का ही जप करते थे। तो वंशीवट पे बैठे और ओम का जप कर रहे हैं तो श्री कृष्ण तो कौतुकी हैं, बहुत बहुत लीलाधारी हैं। तो श्री कृष्ण देखे इस बात को कि महात्मा का चित्त तो बहुत शुद्ध है, बहुत सरल चित्त है, और मेरा नाम है चित्तचोर, हाँ तो चित्त चुराना चाहिए। तो ठाकुर जी ने तुरंत लीला रची, ये इस तरफ यमुना जी के बैठे हैं वंशीवट पे, ठाकुर जी उस तरफ कदम्ब के पेड़ के नीचे त्रिभंग ललित स्वरूप में वेणु धारण करके प्रकट हुए सामने। और जो ठाकुर ने वेणु बजाई वो स्वर लहरी जब इन मधुसूदन पाद सरस्वती के कर्णों से हृदय में पहुंची, तो जो ध्यान लगा के प्रणव का जप कर रहे थे ना ओम ओम, तो ये सब तो भूल गया, आंख बंद कर रखी थी, आंख तो खोल दिए और जब देखे इतना मधुराति मधुर स्वरूप, लावण्य टपक रहा है, माधुर्य टपक रहा है भगवान के श्री विग्रह से, हा? इतनी स्मित मुस्कान है, घुंघराली अलकावली है, तिरछी चितवन है, ये सब देख के महात्मा के तो होश उड़ गए। और वहां पर उन्होंने एक श्लोक जो है वो उद्धृत किया, सहसा उनकी वाणी जो है प्रकट हुई है और उन्होंने उद्धृत किया है श्लोक, बोले वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा। भगवान की रूप माधुरी का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीतांबराद अरुण बिंब फलाद अरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम् न जाने। क्या वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले वंशी विभूषित करार, अपने हाथों में वंशी धारण किए हुए श्री कृष्ण। इसका भी एक अलग महात्म्य है, इसका भी एक अलग रहस्य है कि श्री कृष्ण वंशी ही क्यों धारण करते हैं और कोई वाद्य यंत्र धारण क्यों नहीं करते। थोड़ा सा इसका रहस्य जो है वो ये है कि वंशी ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है। एक इंस्ट्रूमेंट है ना, वाद्य यंत्र है, हाँ, तो इसके हृदय में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, पूरा का पूरा खोखली है अंदर से। आप सोच सकते हैं कि खोखले तो मृदंग भी होते हैं, ढोल भी होते हैं, तो उनको ठाकुर ने धारण क्यों नहीं किया। बोले इसलिए धारण नहीं किया क्योंकि ढोल और मृदंग ने अपने मुंह को छुपा रखा है, और छुपा रखा है इसी कारण से इनके मुंह पर कालिक पुती हुई है। वंशी में कोई कालिक नहीं है, अंदर से बाहर तक पूरी की पूरी खाली है। तो जिसका हृदय पूरी तरीके से खाली होता है भगवान वहीं विराजते हैं, तो वंशी इसीलिए। तो वंशी विभूषित करार नवनीर आभा, आभा कैसी है, बोले जो नव जलधर मेघ है उस मेघ की कांति को भी विलज्जित कर देने वाली आभा है। नवनीरद आभा और पीतांबराद अरुण बिंब फलाद अरोष्टा, भगवान के सारे शरीर में पूरे श्री अंग के अंदर ऐसा बताया जाता है कि बहुत मधुर हैं सारे अंग, अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है, हाँ, परंतु श्री विग्रह में सबसे ज्यादा मधुर जो है वो भगवान का श्रीमुख है, और उस श्री मुख में भी सबसे ज्यादा जो मधुर है वो भगवान की स्मित मुस्कान है। किसी की तरफ अगर एक बार मुस्कान करके देख लिए तो वो व्यक्ति जो है वो संसार भूल जाएगा, जैसे मधुसूदन पाद सरस्वती भूल गए, जैसे उद्धव जी भूल गए, इतने बड़े ज्ञानी, हाँ, ब्रह्म ज्ञानी। उद्धव जी के बारे में क्या विशेषण दिया जाता है कि कृष्ण दैत सखा, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, श्री कृष्ण को अगर कोई सलाह लेनी होती थी ना तो वो उद्धव जी को बुलाते थे, उनसे सलाह लेकर कोई कार्य करते थे। और कृष्णस्य दैत सखा, बचपन के सखा हैं श्री कृष्ण के, और इस संसार में इस पृथ्वी के तो पढ़े हुए ही नहीं है, पढ़े भी कहां जाके हैं, स्वर्ग में, वो भी साक्षात बृहस्पति से। कभी कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाके कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, पहले के समय की बात है, तो बृहस्पति जी अपने शिष्यों को लगा देते थे ज्ञान देने के लिए, बोले इनको पढ़ा दो थोड़ा सा, हम थोड़ा बिजी हैं। परंतु जब उद्धव जी पहुंचे ना तो बृहस्पति जी ने स्वयं बिठाकर पढ़ाया उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान, इहलौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या दोनों प्रदान की उनको। उद्धवो बुद्धि सत्तम, ऐसी बुद्धि वाले श्री उद्धव हैं। तो ऐसी बुद्धि वाले श्री उद्धव जिनको ज्ञान का अजीर्ण हो चुका है, वो ये समझते हैं कि मैं जो जानता हूं ब्रह्म ज्ञान, हाँ, इतना तो कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए ठाकुर ने उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए उनको ब्रज में भेजा, हाँ। वो ये सोचते थे, कभी कभार जो बहुत पढ़ जाते हैं ना उनको बोलने का बड़ा स्वभाव होता है, वो चाहते हैं कि कहीं कुछ श्रोता मिले तो हम अपना ज्ञान बखारें, हाँ। तो वो सोचे कि उद्धव जी कि अब गोपियां जो हैं कृष्ण प्रेम की ध्वजा हैं सबसे ऊपर, इनसे पका हुआ जो श्रोता है वो कहीं मिलेगा नहीं हमें, इसलिए ब्रज में चले। तो ब्रज में जब गए वहां पर तो उद्धव जी, ब्रजवासी बोलते हैं इस बाल को, बोले उधो है गो सुधो। उद्धव जो है ना सीधा हो गया बिल्कुल जाके ब्रज के अंदर, जब देखी ना, पहली बात तो नंद बाबा और यशोदा के सामने ही सीधे हो गए थे उद्धव जी। जब पहुंचे वहां पर तो साधु लोग वर्णन करते हैं, बोले नाली बह रही है ऐसे, तो उन्होंने पूछा नंद बाबा यशोदा का घर कहाँ है, तो सबका हृदय इतना आर्द्र है श्री कृष्ण के विरह में कि किसी से बोलते नहीं बनता है कुछ, सिर्फ इशारा करते हैं, बोले ये नाली देख रहे हो ना, इसको फॉलो करते हुए चले जाओ, जहां तक ये खत्म हो जाएगी वहां पर। बोले ये क्या है, ये पानी कोई विशिष्ट पानी, कोई गंगा जल है कुछ, क्या है। बोलने में समर्थ नहीं है ब्रजवासी कि क्या है, पर फिर भी बहुत साहस करके बोलते हैं। श्री कृष्ण के विरह में जब से श्री कृष्ण यहां से गए हैं, हाँ, ब्रज छोड़ के जब से श्री कृष्ण यहां से गए हैं, तुम जानते नहीं हो उद्धव की ब्रजवासियों की क्या हालत है। नंद बाबा, यशोदा, यशोदा मैया आंखें खो बैठी हैं अपनी, दिखता नहीं है उनको इतना। और कभी तुम जाओगे पास में तो थोड़ा जोर से बोलना, उनको सुनाई भी नहीं देता है कुछ, केवल एक ही नाम सुनाई देता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये सुनाई देता है उनको सिर्फ। उद्धव जी तो अचंभित हो गए देख करके, ये है क्या, मैं तो सोचता था ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन जब पहुंचे वहां पर यशोदा मैया की हालत देखकर, नंद बाबा की हालत, नंद बाबा तो यहां तक कहते हैं कि उद्धव जी ठीक है चलो तुम अपने ज्ञान से मुझे समझा लोगे कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान है जो ये यशोदा को समझा सके, इसकी ममता के सामने तुम्हारा ज्ञान फीका है बिल्कुल, तुम कुछ नहीं जानते अभी कि प्रेम होता क्या है। यहां तक हुआ, इसके बाद जब गोपियों से मिले हैं तब तो जितनी हेकड़ी थी ना ज्ञान की वो सब उतर गई नीचे। उद्धव जी को गोपियों ने बोला ठीक है आप, पहली बात तो देखिए गोपियों को जब पता लगा ना इस बात का कि कोई मथुरा से आया है, तो उन्होंने रथ देखा, उनको लगा शायद श्री कृष्ण आ गए, तो फिर सुबह सुबह जब गोपियों का मिलन हुआ उद्धव जी से, थोड़ा दूर थे तो जैसे आने लगे तो ठाकुर ने अपना मोर मुकुट भी दिया है, बांसुरी भी दी है, पीताम्बर भी दिया है, वो भगवान ने इसीलिए दिया था उद्धव को कि बोले तुम जाओगे ब्रज में तुमसे कोई बात तक नहीं करेगा बिल्कुल, ये लेकर जाओ मेरा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ये मेरा जो कपड़ा है और बांसुरी है, तब तुमको देखकर कोई तुमसे बात करेगा। तो जब पहुंचे वहां पर तो एक बार को तो गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण आ गए, परंतु बाद में जब देखे ना तो फिर उन्होंने यही निर्णय लिया कि श्री कृष्ण नहीं है। अब देखिए कोई बात भी नहीं हुई है उनसे, किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं है, परंतु गोपियां ये देखकर कैसे पहचान गई कि ये श्री कृष्ण नहीं है, विचित्र बात है, कैसे पहचान गई, ऐसा बताया गया शास्त्र के अंदर कि चार लोग ऐसे हैं जिनको आप श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजाकर खड़े कर दो सामने, आप पहचान नहीं पाओगे कि श्री कृष्ण कौन है। जानते हैं चार चार कौन है वो, एक तो स्वयं श्री कृष्ण हो गए, दूसरे सुखदेव गोस्वामी, ठीक है, तीसरे स्वयं अर्जुन, और चौथे एक और है मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ये चार लोग ऐसे हैं जिनको वेशभूषा में आप विभूषित कर दें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि श्री कृष्ण कौन से हैं। इतना इतना सामंजस्य है अंग गठन में, रूप में, सौंदर्य के अंदर। तो जब उद्धव जी को दूर से देखा गोपियों ने तो निर्णय लिया कि श्री कृष्ण नहीं है ये, जबकि पीताम्बर भी है, मोर मुकुट भी है और बांसुरी भी है। तो आप बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ, गोपियों ने निर्णय कैसे लिया इस बात का, और ये रहस्य है श्रीमद् भागवतम के। गोपियों ने निर्णय निकाला है उनके नेत्रों से, नेत्रों से निर्णय निकाला कि श्री कृष्ण नहीं है। क्यों? श्री कृष्ण के नेत्र अति चंचल हैं और भक्तों के नेत्र अति स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिर। भक्त जो है वो इधर उधर ज्यादा नहीं देखता है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं उनकी निगाह एक जगह टिकेगी नहीं, कभी इस गोपी पे है तो कभी इस गोपी पे है, कभी यहां है तो कभी वहां है, अति चांचल्य है नेत्रों के अंदर। और जब मिले उनसे और उनके साथ वार्तालाप हुआ है तो क्या हुआ, गोपियों ने उनका स्वागत करने के लिए बोले चलिए थोड़ा यमुना पुलिन पे बैठ के आपके साथ बात की जाएगी। तो जब यमुना पुलिन पे ले गए उद्धव जी को तो वहां पर अपनी जो ओढ़नी है ना जो स्त्रियां प्रयोग में लाती हैं, सारी गोपियों ने वो ओढ़नी एक के ऊपर एक बिछा दी, बोले महाराज बैठिए इस पे। तो उद्धव जी थोड़ा संकुचित हो रहे हैं बैठने में कि मैं इनका जो वस्त्र है इस पे कैसे, बोले कोई बात नहीं हम आपको दे रहे हैं आप बैठिए। तो आप आश्चर्य करोगे जैसे उद्धव जी बैठे उसके ऊपर, हाँ, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया उनके शरीर के अंदर कि ये क्या वस्तु है भाई। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद मेरे आज तक रोंगटे खड़े नहीं हुए, मैं सिर्फ इस इन इन वस्त्रों के ऊपर बैठा हूं मात्र, और मेरे हृदय में इतना पुलक और आनंद प्राप्त हो रहा है, ये क्या है। और वहां पर फिर जब श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, जब श्रीमती राधा रानी का आवगमन हुआ है, उनकी जब दशा देखी है, तो उद्धव जी तो अपना पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान भूल गए हैं। और वहां पर उन्होंने बोला है, आसाम हो चरण रेणु अहम जुषम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मरतोषधीनाम। आप चाहे लता बना दो, औषधि बना दो, कोई गुल्म बना दो, परंतु इस ब्रज के अंदर जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, चरण रज बना दो, घास का तिनका बना दो कुछ, अरे किसी गोपी के चरण की रज भी मेरे ऊपर पड़ जाएगी ना, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। वो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बोल रहा है इस बात को, और ये ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी बोल रहे हैं इसको। हाँ, ये है वास्तविकता में कृष्ण में विभोर होने की पराकाष्ठा। नारद भक्ति सूत्र के अंदर बताया गया, बोले प्रेम की ध्वजा का क्या वर्णन करते हैं आप, तो बोले यथा ब्रज गोपिकाना, जैसे ब्रज की गोपियां हैं, वो है वास्तविकता में प्रेम की ध्वजा, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो भरत महाराज जो हैं इस स्थिति के साधक उस समय हुए हैं, और इतने विभोर हो जाए वेणु माधुरी में, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, कि स्नान करा रहे हैं, अंदर से ध्यान कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे अपने पूरे वातावरण को भूल गए हैं कि मैं कहां बैठा हूं। ये साधक की स्थिति हो जाती है जब व्यक्ति अंदर से ध्यान करता है और बाहर भी सेवा करता है। श्रील रूप गोस्वामी इस बात का वर्णन करते हैं श्रीमद भक्ति स्वामी सिंधु में, कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है ना, अगर वो अंत करण से ध्यान नहीं कर रहा है, स्मरण नहीं कर रहा है सेवा का पहले, हम जब, मैं अपनी बात बता रहा हूं स्वयं, जब मैंने पुजारी ट्रेनिंग ली आज से 7 साल पहले की बात है, 2009 में मायापुर के अंदर, तो मायापुर के जो हेड पुजारी हैं पंकजांगरी प्रभु और जननिवास प्रभु, उन्होंने हमें सिखाई ये बात कि बोले जब आप अर्चन करते हो, श्रृंगार करते हो, इससे पहले आप अपने मन के अंदर उस सेवा का ध्यान करो, पहले उस मानसी सेवा को करो, और तब बाहर जाके जो बाह्य सेवा है तब करना। नहीं तो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल बाह्य सेवा करता है, आंतरिक सेवा नहीं कर रहा है, मानसी सेवा नहीं कर रहा है, तो उसकी बाह्य सेवा सारी की सारी कर्मकांड है, सारी कर्मकांड। रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु में स्पष्ट बोला हुआ है। तो इसीलिए आप कुछ भी अर्चन कर रहे हैं, भले ही चाहे आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोटी से छोटी सेवा कर रहे हैं, उसको आप पहले हृदय में स्मरण कीजिए, पहले मानसी में करिए उसको। आप सोच सकते हो कि ये चीज हमारे लिए नहीं है, परंतु वास्तविकता ऐसी है ही नहीं, वास्तविकता ही यही है, क्योंकि सबसे उत्तम सेवा मानसी सेवा बताई गई है। शास्त्र में वर्णन है इस बात का कि मानसी में जो सेवा की गई है सबसे उत्तम सेवा है। इसका एक उदाहरण है बहुत सुंदर। एक साधु थे, उनके एक शिष्य हुए, बहुत आज्ञाकारी शिष्य, तो जब दीक्षा दे दिए तो बोले कि शिष्य जब तुम सेवा करो तो बाह्य हाथों से तो जितनी भी सेवा है, बर्तन की, झाड़ू, चौका, पोछा, जो भी कुकिंग करना है ये सब करना, लेकिन अपने आंतरिक हाथों से भी भगवान के चरण कमल की सेवा करना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उनको, तो ये जब इंस्ट्रक्शन दिया, आज्ञाकारी शिष्य थे तो लग गए सेवा में, तो अपने बाह्य हाथों से, शरीर से तो सारी सेवा करते जो भी उनको शिष्य गुरुजी ने दी थी, और अंदरूनी अपने आंतरिक देह से भगवान के चरणारविंद को संवाहन की सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे स्त्रियां माताजी सब घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं, तो वो उनको एक दिन सेवा मिली थी, वो आटा गूंथ रहे थे, तो आटा गूंथ रहे थे बाह्य हाथों से और आंतरिक हाथों से श्री भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे थे, वहां पर सम्मान कर रहे थे। तो आटे की सुकोमलता, आटा भी कितना सुकोमल होता है बाहर बाहर रूप में, और अंदरूनी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की सुकोमलता अंदर से, तो इतना तादाद में हुआ, बाहर आटे को गूंथते हुए और अंदर श्री कृष्ण के चरणारविंद को गूंथते हुए, उनको सम्मान करते हुए, कि इतना तादाद में हो गया कि वो भूल गए कि मैं आटा गूंध रहा हूं कि भगवान के चरण कमल को दबा रहा हूं। 10 बजे से आटा गूंथना शुरू किए, दोपहर के 2 बज गए बैठे बैठे। तो उनके गुरुजी जब ध्यान से उठे तो उन्होंने सोचा कि सब कार्य हो गया होगा, अब भोग लग गया होगा, प्रसाद का समय। तो जैसे वहां पहुंचे तो विचित्र दृश्य देख रहे हैं कि शिष्य जो है आटे के ऊपर तो हाथ ऐसे पड़े हुए हैं और अजस्र अश्रुधारा बह रही है नेत्रों से, पुलक हो रहा है शरीर के अंदर, और बिल्कुल भी उनको अपनी देहावस्थान का कोई भान नहीं है, मैं कि कहां बैठा हूं। तो थोड़ा सा हाथ लगा के जब गुरुजी ने उनको जागृत किया तो बोले, शिष्य क्या हुआ, इतना समय हो गया तुम अभी तक आटा नहीं गूंथ पाए। तो देखिए वहां पर बताया, बोले ये जो स्थिति है ना, इसको छुपा के रखना चाहिए। ऐसी अगर स्थिति क्वचित व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाए अगर, तो छुपा के रखना चाहिए, परंतु गुरुदेव से नहीं छुपाना चाहिए कभी। गुरुजी से दुराव करोगे तो फिर ये भजन साधन जो है ये कम हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा तो एकांत में जाकर फिर उन्होंने बताया कि गुरुजी आपने मुझे सेवा दी थी ऐसी, तो मैं बाहरी हाथों से तो आटा गूंथ रहा था और अपने आंतरिक हाथों से श्री भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहा था, और करते करते आटा गूंथने में और चरण कमल की सेवा में इतना तादाद में हुआ कि मैं भूल गया कि मैं आटा गूंथ रहा हूं कि भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहा हूं, भूल गया मैं, और तब से ऐसे ही बैठा हूं। गुरु जी इतने प्रसन्न हुए, बोले आज हमारे लगाए हुए पौधे में फल आ गया है। ऐसे ऐसी स्थिति साधकों की हो जाती है जब वो निरंतर, जब आप ध्यान करेंगे ना, शुरुआत में तो ऐसा लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, काल्पनिक चीज है, काल्पनिक है, परंतु काल्पनिक भी सत्य हो जाती है, क्योंकि कथा किसकी है, सत्यनारायण की कथा है, सब कुछ सत्य है। कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाता है, क्या वो वास्तविकता में श्री कृष्ण की पेंटिंग है, उसकी कल्पना ही तो है ना। पर कल्पना को भी हम सत्य मान लेते हैं, तो फिर जब मानसी के अंदर कर रहे हैं तो वो प्रकट क्यों नहीं हो जाएगी, हो जाएगी प्रकट अगर व्यक्ति ध्यान पूर्वक करे और एकांत में बैठकर ठीक से करे। तो करिए इसको और थोड़ा समय के बाद आपको अपने आप अनुभव होने लग जाएगा कि ये वास्तविकता है, और हमारे आचार्यों ने दिया ही यही है। गौड़ीय संप्रदाय की स्वसंवेद्य दशा, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, श्री रूप गोस्वामी ने, दास गोस्वामी ने प्रकट करके दिखाई अपने भजन के हिसाब से। गोपाल भट्ट गोस्वामी मानसी सेवा बैठे हैं श्राद्ध के समय में, नाम जप करते करते उस मानसी सेवा में प्रकट होके बोल रहे हैं श्री राधेश्याम से कि आप कृपया करके, जब इतने सारे सेठ लोग आते हैं, इतना सब कुछ सामान देकर जाते हैं, आपको मैं नहीं दे सकता तो इनका क्या फायदा, आप प्रकट नहीं हो सकते मेरे सामने, इतना विरह है उनके हृदय में, सेवा करना चाहते हैं। तो जब सेवा करना चाहते हैं तो भगवान को राधा रमण के रूप में प्रकट होना पड़ता है। ये इतनी उत्कंठा अगर जीव के हृदय में आ गया तो समझ लीजिए उसका काम बन जाएगा। और इस उत्कंठा को जागृत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का संग चाहिए जिनके हृदय में ऐसी उत्कंठा है। एक प्रश्न उठाया गया है बहुत सुंदर कि भगवान में बुद्धि लगे कैसे, सबका ज्यादातर प्रश्न होता है कैसे नाम में मेरी उत्कंठा हो, कैसे मेरे को नाम में रस आए, सबका प्रश्न है ना ये, मन को कैसे। बोले भगवान में बुद्धि जब लगेगी, जब उनका संग करोगे जिनमें, जिनकी भगवान में बुद्धि लगी हुई है, उनका संग करो ना। सतीम मतीम यक्षति वासुदेवम, कपिल देव भी कह रहे हैं इस बात को। बोले अभी हमारी सती, अभी जो बुद्धि है हमारी, मति जो है वो असती है, अभी असती है, क्रूड वर्ड में बोला जाए उल्टा है, लेकिन लगेगी। सतीम मतीम यक्षति वासुदेवम, वासुदेव में जब लगेगी, जब आप ऐसे व्यक्तियों का संग करोगे, ऐसे साधुओं का संग करोगे जिनको ये रोग लग चुका है, ये प्रेम भक्ति का जो रोग है ये जिनको लग चुका है, उनके संसर्ग में आते ही आपको भी ये संक्रामक रोग लग जाएगा। कितने रोगी बनना चाहते हैं इस पर निर्भर है, कितने बनना चाहते हैं डिपेंड करता है कितनी हमारे अंदर लालसा है रोगी बनने की। अरे ये कृष्ण प्रेम है ही ऐसा, वास्तविकता में अच्छे अच्छों को भुला देता है। गोपियों की दशा देखोगे ना आप, एक जगह तक साधु बोल रहे थे बोले ऐसी दशाएं गोपियों की जैसी वेणु बसती थी ना, तो विचित्र दशा हो जाती थी उनकी, काम ही उल्टे करती थी पूरी, ये प्रेम रोग ऐसा है, है? बोले कि दाल में खीर में नॉन, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। खीर में तो डाल दिया नमक, खीर में नॉन, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। मक्खन में मिर्ची डलती है कभी? लेकिन मक्खन में मिर्ची। और गऊ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। ये स्थिति है, जिसको ये रोग लगा समझ लीजिए वो इस संसार के काम नहीं कर सकता, फिर वो उसको अलग ही होना पड़ेगा। तो हम आए हैं भक्ति में यही प्राप्त करने तो आए हैं, और क्या आए हैं बताइए। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दे दिया हमको, सब कुछ शास्त्रों में वर्णन है, इतना सुंदर हमारे पास प्लेटफॉर्म, सब कुछ संकीर्तन है, श्री विग्रह है, प्रसादम इतना सुंदर है, खूब ऐश्वर्य है, खूब ऐश्वर्य है, परंतु इस ऐश्वर्य में भूल मत जाइएगा कि हमें करना क्या है। ज्यादातर यही होता है, व्यक्ति ऐश्वर्य में भूल जाता है सब कुछ, कि हमें माधुर्य प्राप्त करना है। एक्चुअली श्री गोलोक वृंदावन माधुर्यमय, ऐश्वर्य वहां भी है परंतु माधुर्य से ढका हुआ है, माधुर्य से वो चीज आवृत है। तो प्रभुपाद जी कहते ना, ऑल माई टेम्पल्स आर लाइक वैकुंठस, तो वैकुंठ में क्या है? ऐश्वर्य है वैकुंठ में। तो आप देख रहे हो ऐश्वर्य, बाहर के साधुओं में चीज देखने को नहीं मिलती है जो हम इतना देख लेते हैं यहां पर, जानते हैं? फटी लंगोटी और कंथा और एक करुआ हाथ में, ये उनकी पूरी संपत्ति होती है, परंतु यहां तो हम पूर्ण ऐश्वर्य देखते हैं। वैकुंठ है भाई, प्रभुपाद जी ने बोला है वैकुंठ है, तो है, दिख रहा है साफ, परंतु वैकुंठ के अंदर जैसे सागर में जब समुद्र मंथन हुआ है तो वास्तविकता चीज क्या है उसमें? अमृत है ना, तो सागर में विष भी निकला है, सब कुछ निकला है, लेकिन जो सार तत्व है वो है अमृत। इसी तरीके से ऐश्वर्य के बीच में जो माधुर्य है वो वास्तविकता में वो है असली अमृत। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, श्री कृष्ण की रस माधुरी, कितना लावण्य, कितना माधुर्य, कितना सौंदर्य है। व्यक्ति को अगर हल्का सा भी अनुभूत हो जाए तो व्यक्ति अपने प्राण नहीं रख सकता। इंद्रप्रभु एक बार बात बोलते थे इस चीज को, बोले इफ यू विल सी कृष्णा यू विल फेंट, आप बेहोश हो जाएंगे, परंतु इफ यू विल सी राधा रानी यू विल डाई, यू विल डाई, यू नो यू कैन नॉट, आप वो सौंदर्य जो है उसको आप कंटेन ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल, इतना माधुर्य, इतना सौंदर्य है श्री कृष्ण में। और इन्हीं चीजों से श्री कृष्ण जो है पूरे जगत को आकर्षित कर लेते हैं। जब आते हैं यहां पर इसी कार्य के लिए आते हैं, जब भी इस जगत जगत में आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए और जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो इसमें लगकर साधन को भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक करते हुए जब हम इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो आपको ये चीज प्राप्त होगी निश्चित रूप से। आशाबद्ध होना चाहिए, रूप गोस्वामी बात कहते हैं, इस भक्त का लक्षण है आशाबद्ध, आशा रहनी चाहिए कि एक दिन श्री कृष्ण कृपा करेंगे मेरे ऊपर। और इतनी आशा रख के जब आप करते रहेंगे, लगे रहेंगे साधन में, तो निश्चय ये मार्ग ही ऐसा है। 11वें स्कंद के अंदर बोला गया ये राजमार्ग है, न पतेत न स्खलेत, न इसमें पतन है न इसमें फिसलना है, दोनों में से कोई चीज नहीं है इसके अंदर, पूरा राजमार्ग चौड़ा है बिल्कुल, खूब बढ़िया से चलिए, पर चलना जरूरी है, बिना चले कार्य नहीं होगा। तो भक्ति के इस प्रोसेस में लगे रहिए, श्रवण कीर्तन में, और साधु संग बहुत आवश्यक है। इनको करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कार्य जो है निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधे श्याम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।